177 आते जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत क्लियर है। कैसे? और चित्र इतने क्लियर नहीं है जितना लक्ष्मी नारायण का चित्र है। इसमें क्या खासियत है? इसमें स्पष्ट रचयिता और रचना की पहचान है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में कौन है रचयिता? जो प्रकाश की लाइट के बीच में अर्थात संगमुगी ज्ञान प्रकाश के बीच में लक्ष्मी नारायण दिखाए गए,
जो कि नारायण का अर्थ है असली। नार मना जल ज्ञान जल, उसे ज्ञान जल कहो ज्ञान प्रकाश कहो, बात एक ही है। उस ज्ञान प्रकाश की दुनिया के बीच में रहने वाले लक्ष्मी नारायण एड़ी से चोटी तक ज्ञान के रंग में रंगे हुए हैं। वो है रचयिता नई दुनिया की, और उनके नीचे दिखाई गई है उनकी रचना। विश्व महाराज कुमार श्री नारायण की रचना, श्री कृष्ण और श्री राधे, स्पष्ट दिखाया गया है। कि जो सक्षम संगम भी लक्ष्मी नारायण है, वो अपना वाइब्रेशन खुद बनाते हैं। तेज से पैदा हुए हैं, अर्थात याद से उनकी प्रत्यक्षता हुई है, और याद की स्टेज वो निराकारी स्टेज उनको प्रत्यक्ष करती है। निराकारी स्टेज में होते हुए भी साकार शरीर से निर्मल वायुमंडल वाले दिखाए गए हैं। देह का भान का जैसे नाम निशान नहीं, सतयुग की जो रचना होगी फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधा कृष्ण, वो फर्स्ट क्लास रचना है। क्योंकि वाइब्रेशन से उनकी पैदाइश होती है। ऐसा वाइब्रेशन बनता है लक्ष्मी नारायण की याद का, कि वो वाइब्रेशन राधा कृष्ण को जन्म देता है। वाइब्रेशन अर्थात देह भान का नाम नहीं। राधा कृष्ण से जो रचना होगी वो दृष्टि की औलाद होगी, दृष्टि के आकर्षण से पैदा होगी। जो चित्र में दिखाया गया है कि श्री राधा कृष्ण एक दूसरे को फिर भी देख रहे हैं स्नेह की दृष्टि से, और लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को दृष्टि मात्र से भी नहीं देख रहे, सिर्फ वाइब्रेशन मात्र एक दूसरे का, एक दूसरे में स्नेह युक्त होता है। इसलिए बोला कि लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत क्लियर है, वो चित्र है चरित्र को दिखाने वाला। कैसी दुनिया बनाई उन्होंने अपनी, एक वाइब्रेशन वाली दुनिया बनाई, अव्यभिचारी वाइब्रेशन की दुनिया। उसमें भी लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी शिव बाबा ऊपर है, लक्ष्मी नारायण नीचे है। क्यों? लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग के हैं, स्त्री पुरुष का संयोग दिखाया गया है वाइब्रेशन का, तो प्रवृत्ति मार्ग नीचा होना चाहिए क्या? शिव बाबा ऊपर दिखाया गया है, शिव बाबा एक है या प्रवृत्ति में है? गॉड इज वन कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं भगवान। भगवान एक होता है तो उसे भगवान भगवती कहना चाहिए या सिर्फ भगवान कहना चाहिए? कलयुग के अंत में मनुष्य मात्र झूठा हो जाता है। एक बाप आता है वो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, एक सद्गुरु निराकार। सद्गुरु का मतलब ही है एक सच्चा गुरु, बाकी सब झूठा रास्ता बताने वाले। तो गॉड फादर ऊपर में बैठा हुआ है, उसमें भी दिखाते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। परंतु तीनों मूर्तियों में भी टाइटल दिया जाता है देव देव महादेव। गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है, वो दो में प्रत्यक्ष नहीं होता, वो निराकार शिव ज्योति बिंदु मनुष्य जाति की ऊंचते ऊंचे एक मनुष्य में प्रवेश होता है। उसका नाम शास्त्र में रखा गया है प्रजापता, प्रजापति, ये अंत का नाम है। बाबा ने आदि का नाम दिया प्रजापिता, पिता से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो शिव बाबा ऊपर में है और भगवान भगवती का टाइटल लेने वाले प्रवृत्ति मार्ग के लक्ष्मी नारायण फिर भी नीचे। इसलिए सन्यासियों ने जो अपन को शिवो हम का टाइटल देते हैं, वो गृहस्थियों को गिरिहस्थी मानते हैं और अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल देते हैं। क्यों? लक्ष्मी नारायण नीचे क्यों और शिव बाबा गॉडफादर ऊपर क्यों? कोई कारण? लक्ष्मी नारायण जो है उन्होंने पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? पढ़ी। किससे पढ़ाई पढ़ी? शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ी। दो से पढ़ाई पढ़ी या एक से पढ़ाई पढ़ी? एक से पढ़ाई पढ़ी। और जिस एक से पढ़ाई पढ़ी वो एक ही सच्चा, इसलिए सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई हुई है। वो है सबका बाप, लक्ष्मी का भी बाप और नारायण का भी बाप, उनकी सारी प्रजा का बाप। और पीढ़ी दर पीढ़ी सृष्टि में जो भी प्रजा हुई है सब का बाप है। बाप से वर्षा मिलता है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो शिव बाबा बेहद का बाप है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण का बाप नहीं है। हाँ, लक्ष्मी नारायण ने ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ किया तो स्वर्ग के मालिक बने, विश्व के मालिक बने। बाप ने उनके लिए स्वर्ग की राजधानी स्थापना की, विश्व के राज्य की स्थापना की। स्वर्ग में भी राज्य लक्ष्मी नारायण का है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ही स्वस्थिति में पहले स्थित होते हैं। क्या शिव बाप से भी पहले स्थित होते हैं? है? शिव बाप शरीर में आता है, उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, और लक्ष्मी नारायण को तो बल शिव बाप प्रवेश करते हैं तो भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य 5000 वर्ष पहले भी था, तो वो राज्य फिर कहां गया? बाप समझाते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण ही विष्णु बनते हैं। फिर 84 का चक्कर खाए फिर ब्रह्मा बनते हैं। जो विश्व महाराज लक्ष्मी नारायण है वो चक्कर खाकर पहले क्या बनते हैं? पूरा चक्कर लगाने के बाद 5000 वर्ष का क्या बनते हैं? है? ब्रह्मा बनते हैं। उस ब्रह्मा का पूरा नाम क्या है? अरे, प्रजापिता ब्रह्म। दिखाते भी हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये कहां दिखाते हैं? शास्त्रों में दिखाते हैं, चित्रों में दिखाते हैं, हैं? शास्त्रों में दिखाते हैं। तो शास्त्रों में जो बातें दिखाई गई हैं वो कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला? है? हाँ हाँ, वो विष्णु कौन? विष्णु को एक को तो नहीं कहा जाता, विष्णु तो कहा जाता है दो के संस्कारों के मेल को। उनके संस्कारों का मेल जितना होता है कलयुग के अंत में भी, अंतिम जन्म में भी, उतना और कोई जोड़े का संस्कार का मेल नहीं होता। तो कौन सा जोड़ा है जो पहले पहले दिखाया गया विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला? यज्ञ के आदि में कहें तो कौन है? हाँ, यज्ञ के आदि में जरूर कहेंगे कि जो थे विष्णु रूप में वही अंत में लक्ष्मी नारायण बने। पहले पहले पहला ब्रह्मा होगा तो पहला नारायण बनेगा। तो दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। जिनके लिए मुरली में आया हुआ है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचे नंबर माला में जाने वाले हैं, पढ़ाने वाले तो थे। उस पीरियड में भी उन्होंने ऊंची स्टेज की शूटिंग तो की, तो वो युगल जोड़ा क्या आपस में लड़ भिड़ करके अलग हुआ होगा? है? उसके लिए तो अंतिम जन्म का भी गायन है शास्त्रों में, विष्णु की नाभि से, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो अंतिम जन्म का भी गायन है, तो जो आदि में सो अंत में होता है। फिर ब्रह्मा कौन सा निकला? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलने में एक सेकंड का टाइम बताया या लंबा टाइम बताया? लंबा टाइम बताया। तो ब्रह्मा कब प्रत्यक्ष हुआ? यज्ञ के आदि में तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, कब हुआ? पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, कराची से मुरली निकलती चली आई है। जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो ब्रह्मा प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष कब हुआ? 47 में प्रत्यक्ष हुआ। कोई न कोई की बुद्धि में आने लगा कि ये ब्रह्मा का पार्ट है, वेदवाणी इनके मुख से निकल रही है। तो 10 वर्ष तो कम से कम लगे विष्णु से ब्रह्मा बनने में। फिर कहेंगे ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। 47 में ब्रह्मा निकला, फिर उसकी नाभि से विष्णु कब निकला? शूटिंग पीरियड में। कब कहेंगे? अरे मुरली में तो घोषणा की गई है, हैं? 76 की घोषणा की गई है, 10 वर्ष में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होगा और उसके बाद सारी दुनिया में विनाश ज्वाला फैल जाएगी। जो गायन है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो सारी दुनिया को चपेट में ले बैठी। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो देव, ब्रह्मा देवता बना, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप समझाते हैं कि तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही आकर के बताता हूं। तुम माना कौन है? जो भी बाप से सन्मुख बैठकर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बोला। अच्छा, बाप कहते हैं मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसमें इमर्ज करके बोलता हूं, तो जब इमर्ज करके बोलता हूं तो जिसको इमर्ज किया होगा सुनाने के लिए समझाने के लिए उसको तुम कहेगा या नहीं कहेगा? कहेगा। तो जिसको इमर्ज किया जरूर उसकी बुद्धि में ये बात बैठनी चाहिए पहले पहले, क्या कि नर से नारायण कैसे बनते हैं और कौन बनते हैं, पहले पहले उसकी बुद्धि में बैठना चाहिए। सन 47 से मुरली निकलती चली आई है और 69 18 जनवरी तक मुरली निकलती रही। मुरली को सुना तो गया लेकिन उसके रहस्य को क्या पूरा समझा गया? क्यों नहीं समझा गया? जब बाप स्वयं बच्चे को इमर्ज करके उससे बात कर रहे हैं तो बाप भी समझाने वाला है और बच्चा भी समझने वाला है, तो वो वाइब्रेशन उस बच्चे तक नहीं पहुंचेगा क्या? पहले पहले नहीं पहुंचेगा है? पहले पहले उस बच्चे तक वो वाइब्रेशन पहुंचता है। मुरली के एक एक वाक्य का, एक एक अल्फाज का रहस्य उस बच्चे की बुद्धि में बैठते हैं। तो जब रहस्य बुद्धि में बैठेगा तो कहने वाला कहता है तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूं। कितना सहज है। और बाप ब्रह्मा द्वारा ही कहते हैं क्या? बाप पहले पहले किसके द्वारा कहते हैं? ब्रह्मा द्वारा ही कहते हैं कि मुझे पारलौकिक बाप को याद करो। ना लौकिक को याद करो और ना अलौकिक को याद करो। मैं ही पतित पावन हूं कहने वाली दो आत्माएं हैं या एक आत्मा है? दो आत्माएं कहने वाली है। मैं ही पतित पावन हूं, मैं एक के लिए कहा जाता है, दो के लिए? दो नहीं हो सकती, एक ही आत्मा है। आत्मा भी एक है और दो आत्माएं होते हुए भी पर्सनालिटी एक है। मैं ही पतित पावन हूं, जो पतित पावन कहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा रूपी बिठैया को और शरीर रूपी नवैया को दोनों का खिवैया एक हूं, तो पर्सनालिटी के रूप में खिवैया है या सिर्फ आत्मा के रूप में खिवैया है? नवैया को खोया जाता है और नवैया में बैठने वाली आत्मा उसको पार लगाया जाता है। कहे के पार जाना है, ये विषय सागर के पार जाना है, क्षीर सागर में जाना है। तो जो कहने वाला है मैं ही पतित पावन हूं, वो पतित आत्माओं को पावन बनाता है या शरीर को पतित से पावन बनाता है? जो आत्मा है वो आत्मा को पतित से पावन बनाता है। डॉक्टर डॉक्टर बनेगा, आत्मा का उद्धार आत्माओं का बाप करता है और शरीर का उद्धार शरीर का बाप करता है। उसके ऊपर जिम्मेवारी आती है क्योंकि वो मनुष्य शरीर का बाप है, मनुष्यों का पिता है। लेकिन कहते हैं पारलौकिक बाप को याद करो, ये जो मनुष्य सृष्टि का बाप है ये पारलौकिक बाप कहा जाएगा या लौकिक बाप कहा जाएगा? है? वो पारलौकिक बाप है या लौकिक बाप है? अभी क्या है लौकिक माने इस लोक का और पारलौकिक माने इस लोक का नहीं है, इस लोक से जो परे का परे लोक है जहां और किसी की पहुंच नहीं हो सकती, ऐसी परे की स्टेज में रहने वाला है। हैं तो बेहद के दो बाप, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप ऑलराउंड पार्टधारी होने के नाते जास्ती से जास्ती टाइम इस लोक में रहता है या पारलोक में रहता है? इस लोक में रहता है। भले बेहद का बाप है तो भी लौकिक है या पारलौकिक है? लौकिक है। और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप पारलौकिक है। लेकिन याद किसको करना है? पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारी कट योग बल से भस्म हो जाएगी। क्या ये जो तुम योग लगाओगे स्वयं को आत्मा समझ करके, बिंदु समझ करके, सुप्रीम सोल बाप के साथ अपने को अटैच करोगे तो उस योग बल से तुम्हारी तट उतर जाएगी। पट आत्मा की याद की है या देह की याद की है? आत्मा की याद से कट चढ़ती है, देह की याद की कट है। वो चाहे प्रजापिता की देह हो, चाहे कोई ब्रह्मा की देह हो, चाहे कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी की देह हो, अगर सिर्फ देह याद की और उसमें ज्योति बिंदु शिव कोई नहीं याद किया तो कट चढ़ेगी या उतरेगी? चढ़ेगी। इसलिए बोला साकार में निराकार को याद करो। याद भी तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग की है, क्या जो याद है वो भी प्रवृत्ति मार्ग की याद है। ये याद की यात्रा है, अपन को आत्मा समझो और माम एकम याद करो। मुझे एक को याद करो, कोई और दूसरे को याद न करो। है? अगर बिंदु की बात होती माम एकम तो कैसे पता चलेगा कि हमने दूजम बिंदु को याद किया, तीजम को याद किया, चौथम को याद किया, दस पच्चीस को याद किया? बिंदु के कहने के आधार पर नहीं हो सकता। सिर्फ बिंदु समझने से एकम माम एकम दूजम नहीं हो सकता। कब हो सकता है? जब साकार में प्रवेश करे, मुकर्रर रथ में प्रवेश करे, तब कहा जाए माम एकम याद करो। ऐसा करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कौन से कर्म? वि माने विपरीत कर्म। ऐसे कर्म जो तुमने आत्मिक स्थिति में रहकर नहीं किए हैं, स्वयं स्थिति में रहकर नहीं किए हैं। कौन से युग में नहीं किए? द्वापर से लेकर कलयुग तक और संगम युग में भी ढेर सारे कर्म होते रहते हैं जो कैसे नहीं किए हैं, स्वयं स्थिति में स्थित होकर नहीं किए हैं, इसलिए वो विकर्म बन गए हैं, विपरीत कर्म बन गए हैं। और कौन से युग में स्वयं स्थिति में रहकर कर्म करते हैं? सतयुग त्रेता में स्वयं स्थिति में रहकर कर्म करते हैं, इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं बनता। और इसके अलावा और कौन सा युग है जिसमें स्वयं स्थिति में रहकर भी कर्म कर सकते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग है, यहां विकर्म भी होते हैं और यहां अकर्म भी कर सकते हैं, सुकर्म भी कर सकते हैं। तो बोला तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम ही यह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। अभी तुम ब्राह्मण हो, माने क्या नहीं हो, देवता नहीं हो। देवता माने संपूर्ण और ब्राह्मण माने संपूर्ण ब्राह्मण माने देवता। और सिर्फ ब्राह्मण कहा जाए तो अपूर्ण है। अभी अभी ऊंची स्टेज और अभी अभी नीची स्टेज। तुम ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद नहीं हो, किसकी औलाद हो? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। जैसे कहते हैं हम अम्मा बाप की औलाद हैं, माँ बाप की औलाद हैं, ऐसे कहना अच्छा नहीं माना जाता कि माँ की औलाद हैं हम सिर्फ। नहीं, माँ बाप दोनों की औलाद हैं। बाप ने समझाया है कि बाप ही आकर आत्माओं को ज्ञान देते। ज्ञान कब मिलता है? अम्मा के रूप में आते हैं तो ज्ञान नहीं देते हैं। किसी को ज्ञान मिला है? अरे कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये कहेगा कि हमको ज्ञान मिल गया? मैं आत्मा कौन? अथवा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर मुझे आत्मा का कौन सा विशेष पार्ट है? आत्मा में अलग अलग संस्कार होते हैं ना, तो एक का पार्ट न मिले दूसरे से, तो कोई कह सकता है कि मैं आत्मा कौन सा विशेष पार्टधारी हूं? अगर नहीं कह सकता है तो इसका मतलब आत्मा का भी ज्ञान नहीं मिला, और आत्मा का ज्ञान नहीं मिला तो निश्चयात्मक बुद्धि से जरूर पारलौकिक बाप का भी ज्ञान नहीं मिला। निश्चयात्मक बुद्धि से अगर बाप को पहचान लिया, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बाप की मिल्कियत का वारसदार बन जाता है। आत्मा भ्रकुटि के बीच में रहती है। क्या और दूसरा स्थान नहीं है? उत्तमांग में भी दो आंखों के बीच में जो स्थान है नाक के ऊपर, ये तीन विशेष कार्य करता है, नाक कान आंख। इन विशेष कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है। जैसे कोई राजा होता है तो अपने विशेष सेनापतियों और आमात्यों के बीच में रहता है, आत्मा ही अविनाशी है। और ये नाक आंख कान सब है, सब विनाशी। आत्मा अविनाशी है परंतु अभी तो वापस जाना है। कहां वापस जाना है? आत्माओं के लोक में वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो, और बाप को ही याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे जैसे उतरे हो वैसे ही चढ़ते भी हो। कैसे उतरे हो? ऊपर से जब नीचे उतरे तो ढेर की ढेर आत्माओं के संग के रंग में आते गए, देहधारियों के संग के रंग में आते गए, नीचे उतरते गए, देह की कट चढ़ती गई, देहधारियों की स्मृति की कट चढ़ती गई, ऐसे तो नीचे उतरे। अब ऊपर चढ़ने के लिए उल्टा करना पड़े। क्या करना पड़े? जिन जिन देहधारियों का जन्म जन्मांतर संग किया है वो अभी शूटिंग पीरियड में हिसाब किताब लेने आवेंगे। स्मृति में हिसाब किताब लेने तो आते हैं ना, हैं? आते हैं। अब क्या पुरुषार्थ करना है, हैं? उन देहधारियों को देखते हुए नहीं देखना, उनकी बातों को सुनते हुए नहीं सुनना। इसलिए मुरली में बोला, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। अगर उनकी मत पर चल पड़ेंगे तो क्या होगा, है? फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। उनसे पूछते हैं इसका मतलब बाप को भूले हुए। तो जैसे जैसे नीचे उतरे हो देहधारियों से बुद्धियोग चिपकता रहा है, ऐसे ही उसी तरीके से अब ऊपर चढ़ना है। क्या करना है? देहधारियों से बुद्धियोग तोड़ना है और एक बाप से जोड़ना है। माना सत्युग आदि से ही ये जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है। द्वापर युग में तेजी से देह भान बढ़ता है और देह का लगाव शुरू हो जाता है। एक बाप से टूटता जाता संबंध और अनेकों से संबंध जुड़ता जाता है। ये जोड़ तोड़ करने वाला कौन? द्वापर युग से बाप ने कहा कि ये जोड़ तोड़ करो, हैं? नहीं किया, नहीं कहा। जैसा जैसा संगम युग में शूटिंग की है वैसा ही वैसा ड्रामा शूट होता है। न पारलौकिक बाप ने कराया न किया, न लौकिक बेहद के बाप ने कराया न किया। हर एक आत्मा स्वतंत्र रही इस बात में, है? चाहे जिससे जितने भी संबंध देह के जोड़े और बाप से कितना ही तोड़ना चाहे तो तोड़े। कोई आत्मा ऐसी रही भाग्यशाली कि अनेक जन्मों में भी एक से नहीं तोड़ा, बल आखिरी जन्म में माया उनको भी धराशायी कर देती है। तो ज्यादा मेहनत किसको महसूस होगी पुरुषार्थ करने में, और ज्यादा सहज किनको लगेगा? नहीं समझ में आया है? अरे कुछ आत्माएं ऐसी हैं द्वापर युग से तेजी से उतरती तो हैं, सभी उतरती है, लेकिन उन्होंने बाप को नहीं छोड़ा, बाप से दोस्ती का हाथ मिलाए कर रखा जन्म जन्मांतर, औरों से भी जोड़ा तो, लेकिन एक से तोड़ा नहीं, बल आखिरी जन्म में नीचे गिर गए। औरों ने क्या किया? एक से तोड़ते गए औरों से जोड़ते गए। तो फायदे में कौन रहे? सहज पुरुषार्थ किन का होगा और कठिन पुरुषार्थ किन का होगा? मोहब्बत के आधार पर पुरुषार्थ सहज किन का होगा, और मोहब्बत न होने के कारण मेहनत का पुरुषार्थ किसका होगा? अरे 63 जन्मों में भी जिन्होंने एक के साथ मोहब्बत का हाथ जोड़ करके रखा है जन्म जन्मांतर, उनको तो बहुत सहज होगा, और जिन्होंने एक के साथ तोड़ते रहे और औरों के साथ जोड़ते रहे उनको कठिन होगा। भले इस बात की भी शूटिंग द्वापर कलयुग में भी जो पार्ट बजाया उसकी भी शूटिंग कहां होती है, संगम युग में यहां शूटिंग हो रही है, और शूटिंग करने वाले बेखौफ होकर के शूटिंग कर भी रहे हैं। क्या उनकी बुद्धि में ये बात है, ये पॉइंट याद रहता है, हैं? नहीं याद रहता है। इसलिए आसमान में भी जो सितारे हैं यादगार, वो दिखाए जाते हैं, कोई 2-3 सितारे लगातार साथ साथ रहते हैं, बल ध्रुव तारे से कितना भी दूर चले गए लेकिन साथ साथ रहते हैं, और कोई सितारे हैं ध्रुव तारे के नजदीक आसपास चक्कर काटते हैं। तो बात बात के पार्टदारी ये नहीं कह सकते कि भाग्य विधाता भाग्य को जो हमारे किस्मत में लिख दिया उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं, भाग्य विधाता जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार हुआ है? ऊंचा भाग्य बनाने, सुख का भाग्य बनाने और दुख का भाग्य बनाने का जिम्मेवार कौन हुआ है? हर आत्मा, जैसे गीता में लिखा हुआ, आत्मा अपना शत्रु और आत्मा अपना मित्र स्वयं ही है, कोई दूसरा मित्र और शत्रु नहीं हो सकता। गॉडफादर, ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव भी न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु है। आत्मा का योग लगने से तुम्हारी बैटरी भर जाएगी, अभी तुम्हारा दीवा बुझ गया है क्योंकि बैटरी खाली हो गई है, तो फिर दीवा जले कैसे? जैसे बैटरी खाली हो जाती है या खाली होने वाली होती है तो बल्ब कभी जलता है कभी नहीं जलता है, तो ज्योति उजियानी हो गई है फिर ये दीवा जले कैसे? गति चाहिए, क्या जैसे करंट है ना वायर में पास होता है, तो करंट गतिवान होगा तभी तो पास होगा, करंट में गतिशीलता नहीं होगी तो कैसे पास होगा? तो यहां भी क्या चाहिए? आत्मा की गति चाहिए, गति ऊंची स्टेज या सदगति ऊंची स्टेज है? अरे गति ही नहीं है तो सदगति कैसे होगी? पहले तो परम नाम वापस जाना पड़े, बाद में सदगति हो या न हो या नंबरवार हो, तो आत्मा गतिशील होनी चाहिए, माना पत्थर बुद्धि न बनी रहे, भैंस बुद्धि न बनी रहे, आत्मा में मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए, गति चाहिए। दीवा जलाते हैं तो दीवा को गतिशील करने के लिए उसमें तेल डालते हैं ना, घृत डालते हैं ना, तो यहां भी क्या डाला जाता है गतिशील करने के लिए? ज्ञान का तेल डाल रहे हैं। तो ये भी आत्मा पतित बनने से ठंडी हो गई है। प्रजापिता भी है पतित, क्या बहुत से भगत होते हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं, ये सब आंखों के अंधे, वो बस देहदारी को ही पकड़ लेते हैं। कृष्ण के भक्त होंगे तो ब्रह्मा को ही पकड़ लेंगे, बस ब्रह्मा ही ब्रह्मा। राधा के भक्त होंगे बस राधा को ही पकड़ लेंगे। बाप कहते हैं इन सब देहधारियों का बाप कौन है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता। वो भी पावन कहेंगे या पतित कहेंगे? वो भी पतित है। इनको भी इन जैसा बनना है। किन जैसा? लक्ष्मी नारायण की तरफ, चित्र की तरफ इशारा किया, तत्त्वम जो ये है वही तुम हो। पहले तो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर नीचे ते नीचे उतर करके शूद्र बन जाते हैं। कौन? ये लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है ना। ये पहले ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तुम जब देवता बनते हो तो पूज्य भी हो। क्या द्वापर कलयुग में ही पूज्य होंगे? यहां पूज्य पने के संस्कार यहां भी आ जाएंगे, हैं? अभी अभी जितने पवित्र देवता बनते जावेंगे, जितना जितना संपूर्ण ब्राह्मण बनते जावेंगे, अभी भी उनकी पूजा होती जावेगी। पतित आकर उन पावन को माथा टेकेंगे। माथा टेकने का मतलब बुद्धि झुकावेंगे, उनको ऊंच समझेंगे और अपन को नीच समझेंगे। सत्युग त्रेता में पूज्य, फिर द्वापर कलयुग में पुजारी बनते हो। बाप कहते हैं मैं तो एवर पूज्य ही हूं, तुम ही पूज्य बनते हो, तुम ही पुजारी बनते हो। अभी तुम पूज्य बन रहे हो, इस समय तुम ही बाप से वर्षा ले रहे हो सतयुग का। माया पर भी जीत पाने के लिए बल होना चाहिए। काहे का? माया पर जीत पाने के लिए कौन सा बल चाहिए? आत्मबल कहो, योग बल कहो, क्योंकि आत्मा में बल भी कहां से आता है? बाप की याद से आता है। और फिर ज्ञान को भी बल कहा जाता है। जो सच्चा बाप आकर के सच्चा टीचर सच्चा सदगुरु बनकर जो सत्य ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को जो जितना धारण करते हैं उतने बलवान बनते हैं। जो अच्छी रीति आदि करेंगे तो वो ही सतो प्रधान बन जावेंगे, बलवान बन जावेंगे। जो बहुत बलवान होते हैं उनको महावीर कहा जाता है। कौन से धर्म में महावीर की मान्यता है? जैन धर्म में महावीर की मान्यता है। अगर थोड़ा योग होगा तो अंत में प्रजापद पावेंगे, क्योंकि प्रजा अंत में निकलेगी, अपने पद को अंत में पहचानेगी या अभी पहचानेगी? अंत में प्रजा निकलेगी, अपने पद को पहचानेगी। फिर भी पावन तो बनना ही है, चाहे प्रजापद में जाने वाले हो और चाहे राज्य पद में जाने वाले हो। पावन तो यथा राजा तथा प्रजा सबको पावन बनना पड़े, और दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये दैवी गुण धारण करने में सबसे बड़ा दुश्मन कौन आकर खड़ा हो जाता है सामने? रावण कोई एक रूप नहीं है, उसके भी पांच मुख्य रूप हैं। दैवी गुण धारण करने में सबसे आड़े कौन सा विकार आता है? है काम विकार। ये काम महाशत्रु है, कहते भी है ना कि पतितों को आकर पावन बनाओ। तो इस्लामी ज्यादा पतित बनते हैं जो महाकामी की लिस्ट में है, विभिचारी की लिस्ट में है, या बौद्धि ज्यादा पतित बनते हैं, या क्रिश्चियन ज्यादा पतित बनते हैं। द्वापर युग शुरू होता है, पहले पहले जास्ती पतित होना कौन शुरू करते हैं? इस्लाम धर्म की आत्माएं। तो कहते भी हैं पतितों को पावन बनाओ। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, क्रोध करने से कोई पतित नहीं होते। कामी ही पतित बनते हैं। ये बात है कि काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं, वो बात अलग। लेकिन क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता, इसलिए नई दुनिया बनेगी तो विधर्मियों के बीच सबसे पहले जीते जी कौन मरेंगे? जीते जी पहले वो ही मरेंगे जिन्होंने अपनी आत्मा को पावन बनाया होगा, अपनी आत्मा को पावन पहले वो ही बनावेंगे जो बाप के प्रति पहले पहले समर्पण बुद्धि हुए होंगे। तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, और जो भी धन है वो सब सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। तो समर्पण होने में सबसे आगे कौन जाता है? माया समर्पण होने में सबसे आगे जाती है। वो कौन से धर्म की मुखिया है? है जरूर इस्लाम धर्म की मुखिया होगी। मुखिया सबसे पहले आगे कदम बढ़ा दे, तन से मन से धन से समर्पित होने से पहले बुद्धि से ही समर्पण हो जाती है। सबसे बड़ा समर्पण है बुद्धि का समर्पण। ये मन बुद्धि का अहंकार जल्दी नहीं जाता है, बल कोई देखने में आवे कि तन भी पूरा अर्पण कर देता है। जैसे चलाओ वैसे चलाएंगे, उल्टा लटका दो तो उल्टे लटक जावे। मारपीट कर दो तो भी परवाह नहीं, तन की कोई परवाह नहीं, जैसे चलाओ। धन भी पूरा अर्पण कर देते हैं, लेकिन मन बुद्धि को अर्पण नहीं करते। तो माया सबसे पहले मन बुद्धि से पूरा अर्पण हो जाती। जब मुखिया अर्पण हो जाता तो उसकी सारी प्रजा, उसमें भी एक गुण आ जाता है कि वो पहले अर्पण होते हैं। तो ईश्वर के प्रति विनाश के टाइम पर समर्पण तो सबको होना पड़ेगा, लेकिन जो पहले अर्पण में बुद्धि होते हैं वो जन्म जन्मांतर ज्यादा सुख की प्राप्ति करेंगे या दूसरे करेंगे है? इसलिए इस्लाम धर्म ने भारतवर्ष में नहीं सारी दुनिया में मुसलमानों ने जितना राज्य किया है उतना और कोई धर्म ने राज्य नहीं भोगा है। क्रिश्चियंस का तो राज्य अभी 100 वर्षों के अंदर आया है, 200 वर्षों से। इसलिए मुरली में बोला पहले ये इस्लामी मरेंगे। क्या पहले पहले रूहानी मिलिट्री कौन सी तैयार होगी? इस्लामियों की तैयार होगी, फिर काम बहुत तेजी से चलेगा। ओम शांति।